गोविंद हरि हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। कल शाम को सुन रहे थे, वैसे कल हमने संक्षिप्त में सभी स्कंद 9 स्कंद तक बोल दिए है ना, संक्षिप्त में। वैसे तो भगवान कथा विस्तार से महीनों तक करते हो तब भी पूरी नहीं होती, तो हम 9वें स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त कथाओं को स्पर्श करके फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं सभी हाथ जोड़कर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जातो गतः पितृग्रहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वारिपूर्ण सुतसतान क्रतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रथयाञ्जनेषु।
सुखदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की कथा संक्षिप्त में सुनाई, बहुत संक्षिप्त में। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन यदु वंश में सूरसेन हुए और सूरसेन के 10 पुत्र हुए वसुदेव आदि। वसुदेव के भगवान श्री कृष्ण हुए, जिनका जन्म हुआ मथुरा के कारागार में। जन्म होने के बाद तुरंत ही उनको नंद महाराज के व्रज में गोकुल में पहुंचा दिया गया, नंद महाराज के घर। भगवान श्री कृष्ण का नंद महाराज यशोदा मैया ने लालन पालन किया और भगवान ने गोकुल में बहुत सुंदर बाल लीलाएं की, बड़े बड़े अस्त्रों का भी वध किया बिना अस्त्र शस्त्र के ही। 10-11 वर्ष तक भगवान ने ब्रज में लीलाएं की, गोकुल और वृंदावन में। उसके बाद भगवान मथुरा में आए, मथुरा में आकर के भगवान ने कंस का वध किया जो उनका मामा था। कंस का वध करने के बाद उग्रसेन महाराज को राजगद्दी का अधिकारी बनाया और स्वयं संचालन करने लगे। भगवान ने जो मथुरा पर आपत्ति आई थी जरासंध के द्वारा, जरासंध को भी 17 बार उसे परास्त किया, हराया। 18वीं बार जरासंध फिर सेना को लेकर के आने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले मिलिक्षों का राजा काले बना गया। तो भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से कालेवन को भस्म करा दिया। और 18वीं बार जरासंध के सामने से रण छोड़ करके श्रीमान जी भाग गए, द्वारका में जाकर के रहे, और वहां जाकर के उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। बहुत बड़ा उनका परिवार हो गया। जो दुष्ट राजा थे, इस पृथ्वी का भार बने हुए थे, भगवान ने उनका संहार किया अपने बड़े भ्राता बलराम के साथ। कौरव और पांडवों का युद्ध के माध्यम से बड़े बड़े दुष्टों का भी संहार कराया महाभारत के युद्ध में। फिर भगवान को अपने ही परिवार वाले यदुवंशी पृथ्वी का भार कुछ मालूम पड़ने लगे, तो ब्राह्मणों के साप से उनको भी अपने 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 जगह अपने अपने धाम पहले उन्हें भेज दिया। और फिर भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने निज लोक गोलोक धाम वृंदावन को चले गए गोलोक में। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव गोस्वामी, राजन क्या सो रहे थे आपने सुना नहीं? अरे महाराज जी, गुरुजी आप कैसी बात करते हो, मैं इस कृष्ण कथा के लिए 4 दिन से आस लगाए बैठा हुआ हूं, 3 दिन हो गए, 4th दिन है, कब कृष्ण कथा आए, कब कृष्ण कथा आए, तब उस कथा को मैं बड़े प्रेम के साथ सुनूं। और जब कृष्ण कथा आई तो आपने एक सांस में 1 मिनट में पूरी कथा समाप्त कर दी। गुरुजी कृष्ण कथा को थोड़ा निक विस्तार से सुनाओ। तब 10वें स्कंद में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो प्राज्ञं चोभय वंशयानं चरितं परमाभूतम्। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश और इन दोनों वंशों के राजाओं का बड़ा ही अद्भुत आपने चरित्र वर्णन किया और विस्तार से वर्णन किया। पर प्रभु यदोश्च धर्मशीलस्य नितरान्निसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः अवतीर यदोरवंशे भगवान भूतभावनः कृतवान्यामि विश्वात्मा तानि नो वदवीस्तरा। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों के वंशों के राजाओं का विस्तार से वर्णन तो किया और मैंने सुना, बड़ा अद्भुत वर्णन आपने सुनाया सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं का। महाराज इसी चंद्रवंश में आपने यदुवंश का भी वर्णन किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो यदुवंश का भी वर्णन किया, जो यदुवंश स्वभाव से बड़ा ही परम पवित्र वंश है, यदोश धर्मशीलस्य बड़ा ही धार्मिक बड़ा ही धर्मशील यदुवंश है, और इसी यदुवंश में भगवान विष्णु अपने अंश संकर्षण के साथ इसी वंश में अवतरित हुए। तो अवतीर यदुवंशे भगवान भूत भावना, इस यदुवंश में साक्षात भगवान जो सर्वात्मा सबकी आत्मा है और सबके पालन पोषण करने वाले भगवान है, सबकी आत्मा जो भगवान यदुवंश में अवतरित हुए, तो उन्होंने अपने बड़े भ्राता बलराम के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, उन्हें थोड़ा विस्तार से सुनाओ ना। तो यहां श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित कृष्ण कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहे थे कि कब कृष्ण कथा आए, तब मैं कृष्ण कथा को उस अमृत का पान करूं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, और कृष्ण कथा दो प्रकार की होती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक तो भगवत गीता, जिसे भगवान ने श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, और दूसरी श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के बारे में बोला है। तो दोनों ही कृष्ण कथा है, एक कृष्ण कथा जो कृष्ण ने स्वयं कही है, और दूसरी जो कृष्ण के बारे में है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई है। श्रील भोपाल जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, कृष्ण कथा में थोड़ी सी जो रुचि रखता है, तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कितनी महत्वपूर्ण है कृष्ण कथा। श्री गोपाल जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी रुचि रखता है तो निश्चित रूप से वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से अथवा कृष्ण के गुणों का गायन करने से या उनके विषय में सुन करके व्यक्ति बड़ी आसानी से इस भवबंधन से पार हो सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यानी कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त होना। श्री रूपा जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण के विषय में सुनकर इस भवबंधन से मुक्त होना। परंतु यहां महाराज परीक्षित कहते हैं गुरु जी कृष्ण कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाओ, और आप जैसे संत के मुख से कथा सुनने को मिले तो उसका तो कहना ही क्या है। निव्रत तरसई उपगीयमाना भवो सदा श्रोत्र मनोभिराम, कौतम श्लोक गुणानुवादा उमां विरजित बिना पशुघन। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरु जी जिनकी कृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, जिनकी तृष्णा की प्यास, तृष्णा मतलब तृष्णा तीन प्रकार की होती है, तृष्णा पुत्र नार धन तीनों, ये तृष्णा है। पुत्र से मोह बहुत होता है, स्त्री से मोह बहुत होता है, और धन से बहुत मोह होता है। ये तीनों तृष्णा ऐसी हैं ये बंधन का कारण होती है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि निवृत तरसी उपगीयमाना, जिनकी तृष्णा की प्यास हमेशा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त पुरुष महापुरुष, वो जीवन मुक्त होते हैं, और ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष प्रेम पूर्ण भाव से और कृष्ण कथा को गायन किया करते हैं, जो मुमुक्षु जनों के लिए तो भव औषधि का ये भव औषधि है, रामबाण औषधि है। यहां तक कि कृष्ण कथा जो विषयी लोग हैं वो भी यदि कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनके भी मन को बड़ी शांति मिलती है। तो बताइए ऐसी कृष्ण कथा को बिना पशुघनाथ, यानी जो आत्मघाती या पशु हत्यारे के अलावा और कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेगा। कृष्ण कथा में दो लोगों को रुचि नहीं होती। वैसे शील रूपा जी कहते हैं कि भारत में सामान्यतः लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से कृष्ण के विषय में सुनते हैं। शील भोपाल जी कहते हैं आज भी लोगों में ऐसी श्रद्धा है कि जब उनको ये मालूम पड़े कि उस दिन से और श्रीमद् भागवत की कथा या भगवद गीता की कथा होने वाली है और अमुक संत के द्वारा होगी और अमुक स्थान पर होगी, ऐसा जब जो भगवत रसिक होते हैं सुनते हैं तो कृष्ण कथा सुनने के लिए आज भी आते हैं। सब काम को छोड़ करके फिर वो कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं। श्री रूपा जी कहते हैं इसलिए यह श्लोक इंगित करता है कि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह निवृत्त हो, निवृत्तर से ही उपगीयमाना। ऐसा नहीं कि श्री रूपा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो पेशेवर वाचक वाचक हैं, पेशेवर वाचकों से कथा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए चेतन महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहिए। भागवत परो दिय भागवत स्थाने।
और श्री सनातन गोस्वामी ने तो पद्म पुराण से एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है पद्म पुराण से कि अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हर कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट थाप है। जो वैष्णव नहीं है उससे कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से उदाहरण दे रहे हैं कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि अवैष्णव के मुख से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए और वैष्णव निवृत्त कृष्ण होते हैं, उनका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। जो वैष्णव होते हैं निवृत्त अर्ष होते हैं उनका कोई और कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य क्या होता है केवल कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। यहां शील रूपा जी पशुघ्न जो दो प्रकार के लोग हैं जो कथा में रुचि नहीं होती उसका वर्णन करते हैं कि एक तो वो हैं पशुघाती जैसे कर्मकांडी लोग। ऐसा नहीं केवल कसाई हो, जो कर्मकांडी लोग हैं तो पहले कर्मकांडी जब किया करते थे उसमें पशु बलि दी जाती थी, पशु की हत्या करते थे, तो ले ऐसे लोगों को भी कसाई कहा गया है कि अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे कर्मकांड यज्ञ करके और निरपराध पशुओं की बलि करते हैं वो भी कसाई ही है। और ये कसाई वो है जो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को असली जो खुराक है भगवान के भजन की भगवत कथा की वो नहीं दे रहे, ऐसे लोग आत्मघाती कहे गए हैं और पशुघाती कहे गए हैं। ऐसे लोग ही कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेते, बाकी सब लोगों को कृष्ण कथा में बड़ी भारी रुचि आती है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुजी आप कृष्ण कथा को सुनाइए, और कहते हैं कि कृष्ण तो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे कुल देवता हैं। कैसे? बोले पिता महामे समरे मरंजई देव व्रता चातुरथई तिमंगल दुरत्तयम् कौरव सैन्य सागर कृत्वा तरम बस पदम स्मित पलवा। गुरुजी अरे कृष्ण तो हमारे कुल देवता ही है,
हमारे कुल देवता हैं,
हमारे बाबा अर्जुन पांडव इत्यादि जब बड़े भारी संकट में थे महाभारत के युद्ध में, तो कौरवों की विशाल सेना सागर के समान उनकी सेना थी, विशाल सागर के समान, और उस सागर में भीष्म जो देवताओं को भी, जो देवता भी उनको नहीं जीत सकते, ऐसे भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े महारथी तिमिंगल के समान उसमें भय उत्पन्न कर रहे थे। धन्य हमारे स्वनाम पितामह जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के कौरव रूपी सेना को ऐसे पार कर गए, ऐसे पार कर गए। बोले वत्स पदम, जैसे कोई बछड़े के खुर के गड्ढे को बड़ी आसानी से पार कर जाता है, ऐसे बड़ी आसानी से कौरवों की सभा सेना को पार कर गए। और उन्हीं कृष्ण की आपने कथा संक्षिप्त में सुना दी। और देखो ये जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं ना, अपनी सात बलांड का 3.5 हाथ का जो मेरा शरीर है, ये कृष्ण की ही देन है, नहीं तो ये तो पहले ही नष्ट हो चुका था। क्या वो द्रोणास्त्र विपलुष्टमिदं संतान बीजं कुरुपांडवानां युगोपि कुक्षिं गत आत चक्र मातुश्च मे यः शरणं गतायः। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ये मेरा शरीर तो पहले ही नष्ट हो चुका था, अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से मां के पेट में ही नष्ट प्राय हो चुका था, पर धन्य है भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, जब मेरी मां उनकी शरण में गई तो उन्होंने मेरी रक्षा की गर्भ के अंदर ही, और मैंने कन्हैया के दर्शन मां के गर्भ में ही किए। और उन भगवान श्री कृष्ण की कथा आपने संक्षिप्त में सुना दी, थोड़ा विस्तार से सुनाओ। और कहते कि रहिण्यस्तमेह प्रोक्त रामः संकर्षणत्वया देव क्या गर्भ संबंध है पुतो देहांतरम बिना। आपने कहा कि देवकी की 8 संतान 8 पुत्र हुए, और उन देवकी की संतानों में 8 पुत्रों में आपने बलदेव को गिनाया, उधर रोहिणी के भी पुत्र आप के रोहिणी के भी नंदन रोहिणी के पुत्र हुए बलराम, तो ये ऐसा कैसे हुआ भाई, एक ही शरीर से दोनों माताओं के गर्भ से कैसे जन्म लिया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, तो थोड़ा हमको ये भी स्पष्ट करके बताएं। और आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही अपने पिता के घर को त्याग करके ब्रज में चले गए, तो कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर देहा ब्रजं गतः क्ववासं जात भी सार्धं कृतवान सत्यतां पतिः। कहते कि कस्मान मुकुंदो, भगवान मुकुंद ने अपने पिता के घर को क्यों छोड़ा, अरे जन्म हुआ उनका वसुदेव जी के यहां अपने पिता के यहां, तो अपने पिता का घर क्यों छोड़ा, वो ब्रज में क्यों गए, और ब्रज में गए भी तो नंद महाराज और यशोदा मैया के यहां रहे, तो उनके यहां कहां कहां ब्रज में किस किस स्थान पर रहे अपने सभी प्रेमियों के साथ, और फिर ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, ये भी हमको बताएं। और फिर एक हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बोले क्या, बोले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध क्यों किया, अरे मामा तो पिताजी के समान होता है, मां का भाई होता है, कंस उनका मामा था तो उन्होंने अपने मामा का वध क्यों किया उन्होंने, ये भी हमको बताएं। और अपने मामा का वध करके जब मथुरा में कुछ लीलाएं की, 11 मथुरा में 14 वर्ष तक रहे, 11 वर्ष तक लगभग वृंदावन में और 14 वर्ष तक मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में, तो ले भगवान ने जो वृंदावन में लीलाएं की वो, और मथुरा में जो जो लीलाएं की हैं वो, और फिर द्वारका में जो लीलाएं की उन्होंने, वो सारी लीलाओं को जो मैंने पूछी उन्हें और जो पूछने को रह गई है
सभी भगवान की लीलाओं को विस्तार से वर्णन करें गुरु जी, एक भी कृष्ण कथा छोड़ना मत, सारी उनके लीलाओं का चरित्रों का वर्णन करना। और हम लोग उनके चरित्रों को सुनने के लिए बस बैठे हुए हैं, आस लगाए हुए। सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन थोड़ा कुछ नाश्ता पानी तो कर लो, तुम कुछ 4 दिन हो गए, मैं देख रहा हूं लगातार कथा सुन रहे हो, कुछ खाया ना पिया। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी आप भोजन पानी की बात करते हो?
नहीं साधु सहचन मन चेतो दम पीवा धोते पिबंतम पत्मुखां भोज च्युतम हरि कथा अमृतम।
महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी आप नाश्ता पानी की बात करते हो, भोजन पानी की? अरे भोजन पानी की तो बात दूर है, मैंने जल तक भी छोड़ दिया। भोजन करना तो दूर की बात है, अब मैंने जल भी ग्रहण नहीं किया है 4 दिन से, और ना मैं भोजन जलपान कुछ ग्रहण भी नहीं करूंगा। क्यों राजन? बोले महाराज मैं, मेरी खुराक मिल रही है। क्या? बोले पिबंतम तत्मुखा भोजन चित्तम हरि कथा अमृतम। प्रभु आपके मुख से कथा अमृत टपक रहा है, अमृत, उस अमृत का पान कर रहा हूं, आप बस इसी अमृत का पान कराते रहो, अब मुझे जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है। धन है महाराज परीक्षित, जो कितनी उनकी कथा सुनने में कितनी रुचि है, पर तभी जीव का कल्याण होता है।
भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ पर चलते रहोगे, जो सत्संग पथ पर गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ पर गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ पर चलते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे।
यदि भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहोगे, तो संसार सागर से बड़ी आसानी से तरते रहोगे, और सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। क्यों? सत्संग एक ऐसा साधन है इस कलयुग में कि संसार सागर से पार करने का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। यहां महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुजी बस कथा अमृत का पान कराओ, ये कथा ही अमृत है, यही हमारा सबसे मुख्य जीवन है, यही हमारी आत्मा का भोजन है, बस आत्मा का भोजन कराइए प्रभु। अब भूख और प्यास हमको कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारा जीवन, जो कृष्ण के प्रति कितना का प्रेम है, और कृष्ण कथा के लिए आपकी कितनी रुचि है,
बोले वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति भक्तारं प्रक्षकं सूत्रं तत्पाद सलिलं यथा।
राजन आपकी कृष्ण कथा में कितनी रुचि है और कृष्ण कथा कितनी महत्वपूर्ण कितनी शक्तिशाली कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी पवित्र है।
विभास देव कथा प्रश्न
पुरुषान त्रीन पुनाति ही ये भगवान श्री कृष्ण की कथा तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। कौन किन कौन कौन से लोगों को?
पूरे वक्तारम
जो इस कथा को कहते हैं उनको पवित्र करती है और बोले प्रक्षकम जो मुख्य यजमान होते हैं इस कथा का आयोजन करते हैं उनको पवित्र करती है और तीसरे बोले श्रोतारम जो श्रोता होते हैं उनको भी पवित्र करती है। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। कैसे? बोले जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणोदक तीनों लोगों को पवित्र करता है उसी प्रकार ये भगवत कथा तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। कथा कहने वाले को, कथा कराने वाले को और कथा सुनने वालों को, तीनों को पवित्र करती है।
राजन तुमने कृष्ण कथा की रुचि स्वाभाविक उत्पन्न कर ली है, आप बड़े भाग्यशाली हो।
परीक्षित ये उस समय की बात है जब दुष्ट राजाओं के अत्याचार से ये पृथ्वी बहुत बहुत दुखी हो गई थी। इतनी दुखी हुई है पृथ्वी ही कि गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोले गौरभू गौरभू त्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विहो उपस्थितान्ति कै तस्मै व्यसनं समबोचतः।
पृथ्वी दुष्ट राजाओं के अत्याचार से दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची और रोती रोती ब्रह्मा जी से कहने लगी पितामह अब इस अपनी ये सभी जो प्रजा है उसको संभालो, अभी सभी आपकी प्रजा को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, अपने ऊपर धारण नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं नदियों और पर्वतों का वजन सहन कर सकती हूं पर मेरे ऊपर दुष्ट जो अत्याचार कर रहे हैं उस अत्याचार को भी सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी।
ब्रह्मा जी अरे तुम रसातल में चली जाओगी ये सब हमारी प्रजा कहां रहेगी?
प्रभु मैं नहीं जानती, अब हमसे कष्ट सहन नहीं होता, अब ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी कष्ट को मैं। यदि आपको मुझे रखना है तो कुछ उपाय करो, मेरे इन कष्टों को दूर करो जो मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है।
ब्रह्मा जी बोले देवी जी चिंता मत करो और आपके कष्ट का उपाय करते हैं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को गौरूपणी पृथ्वी को अपने साथ में लेकर के भगवान शिव जी को साथ में लिया और देवताओं के राजा इंद्र को साथ में लिया और भी मुख्य मुख्य देवताओं को लिया। ब्रह्मा जी क्षीर सागर के पास भगवान नारायण की स्तुति करने लगे।
सभी देवता उत्तम उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब स्तुति कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी के कान में आकाशवाणी आई,
बोले गिरम समाधो गगने समीरिता निशम्य वेधा त्रदशानुवाच गां पौरुषी मे सुनता नरा पुनः विधीयता मासु तथेव मांचिरम।
गिरन समाधौ गगने समीरताम ब्रह्मा जी स्तुति करते करते समाधिस्थ जब हो गए, ब्रह्मा की समाधि जब लग गई स्तुति करते करते तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। केवल ब्रह्मा जी ने ही सुनी, यद्यपि वहां सारे देवता थे, भगवान शिव भी थे इंद्र भी थे सारे देवता थे
लेकिन ब्रह्मा जी ने ही भगवान की उस वाणी को सुना, क्योंकि भगवान जिसको सुनाना चाहे वही सुन सकता है। ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं सुनो सुनो, मैंने अभी भगवान की आकाशवाणी सुनी है। भगवान ने कहा है कि देवताओं, पृथ्वी के एक कष्ट का मुझे पहले से ही पता है, और अब शीघ्र ही मैं अवतार लेने वाला हूं, और वसुदेव जी के घर भगवान अवतार लेंगे, भगवान ये भी बताया है।
वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरः स्त्रियः।
ब्रह्मा जी बोले, देखो देवताओं, जो भगवान ने हमसे कहा है, मैं आपको सुना रहा हूं कि भगवान शीघ्र अवतार लेंगे और ब्रज में अवतार लेंगे, वसुदेव जी घर अवतार लेंगे, और इस बार तो भगवान अंश और कला से अवतार नहीं, बोले भगवान साक्षात पुरुषः परः, इस बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और बार तो भगवान कभी अंश अवतार कभी कला अवतार लेते थे, इस बार बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, इस बार वही अवतार लेंगे। और देखो जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः, आप लोग भी उनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के लिए, आप लोगों की जो स्त्रियां हैं देवियां हैं वो भी पृथ्वी पर अवतार लें, और सभी देवताओं तुम भी अपने अपने अंश से अपनी अपनी पतियों के साथ और ब्रज में जाकर के यदुवंश में जाकर के अवतार लो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये बात सुनाई और मां पृथ्वी को उन्होंने सांत्वना दी। पृथ्वी देवी को सांत्वना मिल जाती है, वो चली जाती हैं, और सभी देवता अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, जो मथुरा मंडल का शासन करते थे। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी को देवकी को घर ले जा रहे थे, तो कंस ने विचार किया, देखो अपनी बहन के रथ को स्वयं में हांकूं, आखिर वो था तो दुष्ट, पर सभी सभी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए कि देखो भाई आखिर कंस इतना दुष्ट नहीं है, अपनी चचेरी बहन से भी खूब प्रेम करता है, तो स्वयं ही रथवान बन गया, स्वयं ही रथ हांकने लगा, घोड़ों की लगाम स्वयं हाथ में ले ली और स्वयं रथ को हांकने लगा कि अपनी बहन देवकी को और इनके घर मैं पहुंचा के आऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जब कंस रथ को हांक करके ले जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे दुर्बुद्ध, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ लेके जा रहा है, अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंताम या वहसी अबुध, अरे अबुध, अरे मूर्ख, इसका आठवां गर्भ आठवीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल। अब जैसे ही कंस ने यह सुना कि देवकी की आठवीं संतान मेरा काल होगी, पहले बड़ा भाव था, वात्सल्य, बड़े स्नेह से अपनी बहन को ले जा रहा था, स्वयं ही रथवान बन गया था, स्वयं सारथी बना हुआ था, कितना प्रेम था अपनी बहन के प्रति, और जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी कि इसकी आठवीं संतान तेरा काल होगी, सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन उस कंस का जो बहन के प्रति प्रेम था सारा दूर हो गया, और जिस हाथ से वो लगाम पकड़े हुए था, उस हाथ से लगाम को छोड़कर देवकी के केश पकड़ लिए उसने तुरंत ही, और जिस हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चाबुक था, चाबुक फेंक दिया, तलवार खींच ली और देवकी के सर को काटने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने देखा, अरे ये तो मेरे सामने ही, और मेरी नवविवाहिता पत्नी का अभी अभी ये वध किए दे रहा है, अरे पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, मेरा धर्म है अपनी पति की रक्षा, पत्नी की रक्षा करूं। राजन, अरे कंस तुम क्या करते हो,
तुम कितने बड़े यशस्वी योद्धा हो और तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। अरे तुम्हारा यश पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, आप कितने योद्धा हो, कितने बलवान हो, कितने ऐश्वर्यशाली हो, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य मिट्टी मिल जाएगा, जानते हो, क्योंकि ये आपकी बहन है, ये आपकी छोटी बहन पुत्री के समान होती है, और उसमें भी ये नवविवाहिता, और फिर ये स्त्री है, स्त्री पर तो छत्री कभी हाथ छोड़ते नहीं। कंस बोले सुनो, क्या तुम्हारे कान बहरे थे, आपने सुना नहीं अभी क्या आकाशवाणी क्या कहा था, तुमने भी सुना होगा ना। बसदेव जी बोले राजन मैंने सुना, तुम अपनी मृत्यु के भय से इतना जघन्य दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो गए, जानते हो एक दिन मृत्यु सबकी होती है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम मृत्यु के भय से और ऐसा दुष्कर्म करने को तैयार हो गए। बोले मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहजायते अद्यभाग्य सतांति वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। बसदेव जी बोले राजन कंस महाराज, अरे आप मृत्यु से इतने भयभीत हो गए, जानते हो जब किसी भी जीव का जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ मृत्यु का भी जन्म होता है, अब वो मृत्यु चाहे आज हो या 100 वर्षों के बाद हो, पर मृत्यु मृत्यु वही प्राणाम ध्रुव, प्राणी की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। और भगवान ने कितन कहा है, जात से ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म तुख तस्मा परिहारे अर्थ न तुम सोचित मरहति। भगवान ने भी गीता में कहा है कि अर्जुन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु ही है उसका जन्म निश्चित है। तो ऐसे में धैर्यशाली व्यक्ति कभी विचलित नहीं होते। तो राजन तुम मृत्यु के भय से इतने विचलित क्यों हो रहे हो, अरे मृत्यु के भय से इतना जघन्य दुष्कर्म करने को आप तुल गए, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। बसदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, बहुत समझाया, शाम वेद इत्यादि सभी नीतियों से उन्होंने समझाया, पर कंस किसी तरह से राजी नहीं हुआ है, मारूंगा ही इसको, ये मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है और मेरा काल उत्पन्न करने वाली है, इसको मारूंगा। बसदेव ने विचार किया, वही ये दुष्ट मानेगा नहीं, और किसी भी उपाय से किसी तरह से इस समय देवकी की मृत्यु को टाला जाए, हर व्यक्ति को मृत्यु का टालने का उपाय करना चाहिए, यदि सभी उपाय निष्फल हो जाएं तो फिर बात दूसरी है। तो बसदेव जी ने कहा राजन तुमको मृत्यु का जो भय है, तुम्हारा काल देवकी तो नहीं है ना, आकाशवाणी ने जो तुम्हारा काल देव की तो नहीं बताई, बोले देव की तो नहीं बताई, अरे महाराज इसकी संतान ही तो बताई ना, तो जाओ मैं वचन देता हूं, और आप जानते हो मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता मैं, ये वचन देता हूं इसकी जो भी संतान होगी महाराज आपको लाके सौंप दूंगा, आपसे मार देना चाहे कुछ भी करना। कंस की समझ में आ गया, हाँ बस देव जी कभी झूठ तो बोलते नहीं है, ठीक है ले जाओ इसकी जो भी संतान हो मेरे पास भेज देना, हाँ महाराज चिंता मत करो। तो बसदेव जी अपनी पत्नी को घर लेके आते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते राजन कुछ समय की बात उनके एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र को लेकर के बसदेव जी कंस के पास ले जा रहे हैं, यद्यपि अपने पुत्र को कोई भी काल में नहीं ले जा सकता काल के लिए, लेकिन बसदेव जी कहते हैं कि क्या करूं मैंने वचन दिया है, मेरा वचन झूठा न पड़ने पाए, मैं झूठा न बनूं, इसलिए वो पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंचे। महाराज ये पहला पुत्र हुआ है लो। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, भाई देखो बसदेव जी वास्तव में बड़े सत्यवादी हैं। कंस प्रसन्न हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला वसुदेव जी, मेरा जो काल है ना, देवताओं ने आठवां देवकी का पुत्र बताया है, ये पहला पुत्र है, ये मेरा काल नहीं है, जाओ ले जाओ घर से, इसकी मां को दो, इसे दूध पिलाए। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आ रहे हैं, पर रास्ते में सोचते आ रहे हैं, भाई कंस है तो दुष्ट, और दुष्टों का पता नहीं, कभी खूब प्रसन्न हो जाए और कभी रुष्ट हो जाए, दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा होता है। उस बच्चे को ले तो आए, इधर नारद जी ने विचार किया कि कंस अगर ऐसे ही दया करता रहेगा तो हमारे प्रभु का अवतार कैसे होगा। अब तो नारद जी चल पड़े नारायण नारायण करते हुए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारद जी वीणा बजावत हुए, हरि गुण गाते हुए और कंस के दरबार में जब आए तो कंस के सेवक ने जाकर के कंस महाराज को समाचार सुना, महाराज जी तेजस्वी नारद जी आए हुए। कंस बोला, आदर के साथ ले आओ गुरु जी हमारे। अब तो नारद जी को कंस ने अपने ही सोने के सिंहासन में बिठा दिया, स्वयं अलग छोटे आसन पर बैठ गया, क्योंकि कंस नारद जी को अपना गुरुजी मानता था। नारद जी बोले, कंस तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या? नंदाध्याये ब्रजे गोपा याश्चामी संचयोषितः विष्णुयो वसुदेवाद्या देवक्याद्यायदो स्त्रियः सर्वे वै देवता प्रायो त्रिभयोरपि भारत ज्ञातयो वन्दुसुतो ये च कंसमन्व्रतः। नारद जी बोले, अजम तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या गुरुजी? जानते हो ये जो ब्रज में नंद आदि जो गोप हैं और वसुदेव आदि जो यदुवंशी हैं, ये सभी के सभी देवता हैं। देवकी और यशोदा इत्यादि जितने भी ब्रज की स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, सभी देवी और देवता हैं ये। और जो मथुरा में जो तुम्हारे जो सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी हां में हां मिला रहे हैं, वो भी सर्वे वही देवता प्राय, सर्वे वही देवता प्रायो, सब के सब देवता हैं। देखो एक तो महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मार्ग में मैंने देखा गंधमादन पर्वत की तलहटी में सभी देवताओं की बड़ी भारी इष्ट गोष्ठी हो रही थी, तो वहां मैं भी आया और उस सभा में मैं भी बैठा था। तो वहां भगवान विष्णु थे और सभी देवता थे, तो सभी ऐसी मंत्रणा कर रहे कि कंस को कब और कैसे मारा जाए। तो सभी देवता तुम्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि तुम पहले जन्म के विष्णु के बैरी हो, पहले तुम कालनेमी असुर थे,
तो देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने तुम्हारा वध किया था, अब तुम कंस महाराज बन गए हो, तो भगवान विष्णु अब फिर तुम्हें मारेंगे, क्योंकि देवता उनको यही कह रहे हैं कि प्रभु उस कंस को मारो। तो देवकी के आठवें गर्भ की जो देवताओं ने आकाशवाणी की है, तो देवकी के गर्भ से ही विष्णु जन्म लेंगे जन्म, और तुम्हारा काल होगा, तुमको मारेंगे। भाई तुम मेरे शिष्य श्री, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, तुमसे क्या छिपाऊं। अच्छा महाराज बोले हाँ, तो देवकी गर्भ से वो किस कभी भी आ सकते हैं, तुमको मारेंगे। कंस बोले महाराज ये देवकी का पुत्र पहला दिया तो मेरा शत्रु नहीं है ना। नारायण नारायण, देवताओं की बड़ी उल्टी चाल होती है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। भाई देखो देव का देवता पहले को भी आत्मा बना दो, और आत्मा किसी को भी आत्मा बना सकते हैं। तो उन्होंने एक कमल की पंखड़ी ली और गिनाई, बोले गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, और ठीक है 8 हो गया, अब इधर से गिनो। तब एक की तरफ, अब आठ की तरफ से गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो पहला था वो आठवां बन गया। तो बोले देवताओं की गिनती जानते हो कैसी भी हो सकती है। तो कंस बोला गुरुजी तो उस बालक को जाके मार दूं। नारद जी बोले नारायण नारायण, मैं कैसे कहूंगा तुम किसी बालक की हत्या कर दो, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, जो असली बात थी मैंने आपको बता दी। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन कंस को इतना ही बताना बहुत काफी था, दुष्ट तो था ही वो। तो बोले ठीक है अब मैं उस बालक को मारता हूं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए, और कंस ने जाकर के देवकी के उस बालक को गोद से छीना और घुमा करके शिला में पटक करके उसको मार दिया। देवकी बेचारी रोती बिलकती चिल्लाती रह गई, क्या करती वो।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। सातवें गर्भ में भगवान के अंश संकर्षण देवकी गर्भ में आए, तो देवकी बड़ी तेजस्वी लगने लगी। इधर भगवान ने अब गोलोक में अपनी योग माया से लगे भी लगाओ महाराज आज्ञा, बोले आज्ञा आपके ही है। रे गच्छने बिंबजं भद्रे गोप गोलकं कृतं
रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुल।
भगवान ने कहा प्रिय माया से एक देवी तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम ब्रज में चली जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज में चली जाओ। और ब्रज गोप और गोपियों से बड़ा ही अलंकृत हो रहा है, बड़ा ही सुहावना हो रहा है। और देखो वहां नंद महाराज के ब्रज में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती हैं, कंस के भय से। और भी उनकी बहुत सारी पत्नियां इधर उधर छुप के रहती हैं, पर रोहिणी जो है वसुदेव जी की पत्नी नंद महाराज के यहां ब्रज में रह रही है। तो वहां तुम चली जाओ, और कारागार में जो देवकी हैं उनके गर्भ में हमारे अंश संकर्षण है शेष जी, उनको उनके गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और तुम भी यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना, जाओ देवी। और मैं भी आ रहा हूं, मैं भी देवकी के 8वें संतान के रूप में मैं भी जन्म लूंगा, ये तुम कार्य करो। और जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, इस संसार में लोग तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे, कई नामों से तुमको पुकारेंगे।
नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च राहुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी सारदेति अम्बिकेति च।
संसारों लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे, कई नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे, कोई दुर्गा के नाम से, कोई भद्रकाली के नाम से, कोई विजया के नाम से, कोई वैष्णवी के नाम से, कोई कुमदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी और नारायणी, शारदा इत्यादि, अंबिके इत्यादि नामों से लोग तुम्हारी खूब पूजा करेंगे और तुम उन लोगों को मोहमा का वरदान देने में सक्षम होगी। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी योग माया को भेजा, अपनी माया को। तो उन्होंने देवकी गर्भ से सातवीं संतान को खींच करके रोहिणी गर्भ में स्थानांतर कर दिया। तो जैसे ही देवकी के गर्भ में से वो बालक को निकाला, हा किसी को पता लगा नहीं, सबने क्या समझा कि देवकी का सातवां गर्भ तो ऐसे ही गर्भपात नष्ट हो गया। और इधर अब भगवान बोले, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदु। भगवान श्री कृष्ण भी जो विश्वात्मा हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, अपने संपूर्ण कलाओं से, षडेश्वरी रूप से भगवान और बसदेव जी के मन में आए। पहले भगवान बसदेव जी के आनक दुंदुवे, मन आनक दुंदुवे, बसदेव जी का एक नाम आनक दुंदुवे है, तो उनके मन में है भगवान, उनके मन में आए। अब बसदेव जी का बड़ा ही तेज, इतना तेजस्वी हो गए, इतना तेजस्वी कि बस बल में, यश में, सभी प्रकार से वो उनका तेज अगाध हो गया। बसदेव जी ने फिर अपने मन में आए हुए भगवान को देवकी मां के गर्भ में स्थापित किया। तो वह देवकी, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, वो देवकी जो भगवान सभी के निवास हैं, भगवान जगत निवास हैं, और वो जगत निवास भगवान, जगन निवास भगवान के भी निवास स्थान देवकी जी बन गई। देवकी का तेज बड़ा दिव्य हो गया था। इधर कंस ने देवकी को देखा, देवकी के तेज को देखा तो भयभीत हो गया, इस बार तो मेरा काल ही देवकी गर्भ में आया है और देवकी बड़ी तेजस्वी लग रही है, क्या करूं, इसे मारना चाहिए? नहीं नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं है, स्त्री को मारने से मेरा सारा यश मिट्टी मिल जाएगा, सब लोग मेरी बदनामी करेंगे, एक तो स्त्री है, दूसरी गर्भिणी है, ऐसी अवस्था मारना ठीक नहीं। अरे जब इसका बालक हो जाएगा तो छोटे बालक को ही मार देंगे, वो अच्छा है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, ये वही कंस है जो बसदेव जी के समझाने से भी देवकी को मारने से रुका नहीं। बसदेव जी ने खूब समझाया पर उस समय देवकी कंस पकड़, देवकी केस पकड़ के मारने को तुल गया था, और आज इस कंस को कोई समझाने वाला नहीं, फिर भी उसकी बुद्धि में ऐसे सदविचार क्यों आए? क्योंकि वो देवकी के दर्शन कर रहा है, देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान निवास कर रहे हैं, तो भगवान के सामने किसी प्रकार की माया नहीं ठहर सकती। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और जहां कृष्ण ताना है मायार अधकार। उसमें ये सारे अवगुण उसके भाग गए, दुर्बुद्धि भागी, बड़ी अच्छी बुद्धि आई कि देखो भाई ये स्त्री, इसको मारना ठीक नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, कंस को बड़े यानी अच्छे विचार आए, भाई ऐसी अवस्था में मारना ठीक नहीं, जब बालक जन्म लेगा तो जन्म लेते ही मार देंगे, अरे जन्म लेते थोड़ी उसमें शक्ति होगी, तुरंत मार देंगे उसको, देरी नहीं करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, कंस अपने निवास स्थान को चला जाता है और बस वो हर समय हर क्षण वही प्रतीक्षा करता है, कृष्ण का ही चिंतन करता है, उठते बैठते बोले, आसीन सम्य संसिष्ठन भुंजयान पर्यटन मही
चिंतयानो ऋषिकेशं पश्यते तनुमे जगत।
आसीनः समय संसिष्ठन भुंजान पर्यटन मही। अब कंस हमेशा वही चिंतन करता था, कृष्ण के बारे में चिंतन करता था। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते चिंतयानो ऋषिकेशं पश्यति तन्मय जगत। हर समय ऋषिकेश भगवान का चिंतन करता था और चिंतन करते करते समस्त संसार को समस्त जगत को कृष्णमय देखता था। कोई भी काली वस्तु दिख जाती एकदम भयभीत हो जाता था, अरे कृष्ण काला है ना वो काला काला मुरली वाला। कोई भी काली वस्तु को देख करके भयभीत हो जाता। अगर उसकी भोजन करते समय दाल में कहीं काला जीरा भी देखने को मिल गया, उस काले जीरे को देख के भयभीत, कहीं कृष्ण इसमें से उत्पन्न हो जाए, क्योंकि माया भी है। जब खंभे में से प्रकट हो सकता है तो जीरे में से प्रकट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी काली वस्तु को देख करके आसीनहा सम्य संसृष्टन भुजान पर्यटन महीन चिंत्यानो ऋषि के संपस्थिति तन्मय जगत। वो कृष्णमय सब संसार को देखता था। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार वो देवकी की आठवीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इधर भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी इंद्र जी सभी देवता, उनको मालूम हुआ कि हमारे साक्षात भगवान देव की गर्भ में है इस समय, चलो उनकी स्तुति करनी चाहिए, हैं तो गर्भ में ही, चलो स्तुति करते हैं। तो देवताओं ने कारागार में जाकर के बड़ी फूलों की वर्षा की है और भगवान की स्तुति की है। बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रसत्यम सत्यस्य योनिनितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्वनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवता लोग भगवान की स्तुति करते, हे प्रभो आप सत्य संकल्प हैं, आपने संकल्प किया कि मैं शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी पर अवतार लूंगा, प्रभो आपने अपना वो संकल्प पूर्ण किया, प्रभो आप सत्य संकल्प हैं और सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आपकी प्राप्ति का जो साधन है वो सबसे श्रेष्ठ साधन सत्य ही है, सत्य के द्वारा प्रभो आपकी प्राप्ति हो जाती है। प्रभो इस सृष्टि के पहले और सृष्टि के समय सृष्टि के बाद भी एकमात्र आप ही सत्य हैं। प्रभो ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो दृश्यमान जितने भी हैं ये सब आपकी वजह से ही सत्य प्रतीत होते हैं। हे प्रभो हे भगवान आप तो सत्य स्वरूप ही हो, हे सत्य स्वरूप भगवान हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार देवताओं ने बड़ी सुंदर खूब स्तुति की है। देवता स्तुतियां करके अपने अपने लोक को चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते राजन अब बड़ा ही सुंदर समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन, अर्धरात्रि, आहा बड़ा ही समय सुहावना बन गया।
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनम् यरिहि वाजं जन्मऋक्षं शान्तऋक्षगृहतारकम् दिशः प्रसीदुर्गगने निर्मलोदुगडोदयम् मही मंगलभूयिष्ट पुरग्राम ब्रजाकरा।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब बड़ा ही सुंदर सुहावना समय आया। काल परम शोभनम, वो काल समय भी बड़ा ही सुहावना बन गया। नक्षत्र आकाश स्वच्छ हो गया और सभी जो तारे इत्यादि एकदम सौम्य स्वभाव हो गए।
दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी पर सभी जगह मंगल ही मंगल देखने लगा। नगर ग्राम नगर गांव अहिर की बस्तियां और जो भी खनिज पदार्थ इत्यादि पदार्थों की खाने सभी की सब मंगलमय हो गई।
नद्य प्रसन्न सरला हृदय जल गुहा स्त्रिय ध्वजाल कुल सन्नाद स्थल कावन राजय बभू वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि अग्नियश्च द्वजातीनां शान्तास्तत्र समन्वितः।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, नद्य प्रसन्न सरला हृदय जल रोहाश्रय, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, जबकि वर्षा ऋतु में भादों के महीना में नदियों का जल एकदम गंदा होता है, बहुत मिट्टी लेके चलता है जल। किन जब भगवान के जन्म का समय आया तो नदियों का जल भी एकदम स्वच्छ हो गया। हृदय जल रोहाश्रय और सरोवर भी स्वच्छ हो गए, उन सरोवरों में कमल रात्रि में खिल गए, जबकि कमल दिन में खिलता है, रात्रि में कमल खिल गए सरोवरों में। और उस वन में वृक्षों की पंक्तियां फूल और फलों से लद गईं, उन वृक्षों पर जगह जगह भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, कोयल कुहुकू कर रही है और मोर भी अलग से बड़ी सुंदर बोली बोल रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया।
बभु वायु सुखिर पर स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि,
राजन हवा भी बड़ी शीतल सुगंध मंद वायु बहने लगी, जो बड़ी ही स्पर्श करने बड़ी सुखदायक लगती थी। और जो ब्राह्मणों के कुंड अग्नि कुंड जो यज्ञ कुंड की अग्नियां थी हमेशा के लिए बुझा दी थी दैत्यों ने, आज वो ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड की अग्नियां अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी।
मन हंसन प्रसन्नानी साधु नाम सुरभाम जायमाने जने तस्मिन् निदुर्दुंद भयो दिवि।
और संतों के हृदय अपने आप सहसा प्रसन्न हो गए रात्रि में। जो भी वैष्णव थे भक्त थे, जो असुरों के द्वारा सताए हुए थे, असुर कभी उन्हें भजन और यज्ञ साधन नहीं करने देते थे, आज संतों के हृदय स्वतः ही प्रसन्न हो गए, बड़ा ही मन प्रसन्न हो गया। जायमाने जने तस्मिन् निदुर्दुंद भयो दिवि, जब अजन्मा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया तो स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियाएं अपने आप बजने लगी, देवताओं की दुदुम्बियाएं अपने आप बजने लगी। और इतना ही नहीं,
जगहु किन्नर गंधर्वा तुष्टवो सिद्ध चारण विद्याधरयश्च ननतो अप्सरो भी समंतर।
राजन बोले, किन्नर गंधर्व इत्यादि खूब गायन करने लगे, सिद्ध चारण भी खूब स्तुति करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।
मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्वितः मंदं मंदं जलधरा जगरुजुहो अनुसागरम्।
मुमुचुर मुनयो देवा, और आकाश से देवता ऋषि लोग फूलों की वर्षा करने लगे और बादल भी मंदम मंदम जलधरा, वो बादल भी मंद मंद गर्जना करने लगा। कैसे? बोले अनुसागरन, जैसे सागर की तरंगों में
उनकी लहरों में जैसी आवाज आती है उसी की तरंगों के अनुसार ही मंद मंद बादल गर्जना करने लगे।
निसी थे तम धूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः।
कहते राजन अर्धरात्रि थी और उन भगवान के जन्म का जब समय हुआ तो देवक्याम देवी रूपिण्याम जो देवी स्वरूपी देवकी जी थी तो उनके गर्भ से साक्षात भगवान ऐसे प्रकट हुए मानो पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुए हो, पूर्ण चंद्रमा उदय हुए हो, अपनी पूर्ण कलाओं से चंद्रमा पूर्ण कलाओं से मानो उदय हुए हो पूर्व दिशा में, ऐसे भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। आहा, बड़ा ही सुंदर बालक। वसुदेव जी ने उस बालक को देखा, कैसा बालक था? अद्भुत बालक।
बोले तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौवगम।
राधा गोविंद भगवान की जय। तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। वसुदेव जी ने कैसा बालक देखा? बोले अद्भुतम। कैसा अद्भुत बालक था? बोले अंबुज क्षणम। उस बालक के जो नेत्र थे बड़े बड़े कमल के समान खिले हुए नेत्र थे, अद्भुत बालक। जबकि साधारण बालक जब जन्म लेता है ना तो उसकी आंखें बंद होती हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं उस समय, और जब भगवान ने जन्म लिया है तो कैसी उनकी आंखें थी? बोले अंबुजी क्षणम, कमल के जैसे उनके नेत्र थे, बड़े बड़े नेत्र। और क्या विशेषता थी? बोले हे चतुर्भुजम, उस बालक के चार भुजाएं थी, चार हाथ थे, और चार हाथ भी खाली नहीं, शंख गदा युधा आयुधम। प्रत्येक हाथ में, किसी हाथ में शंख है तो किसी में चक्र है, किसी में गदा है तो किसी में पुष्प है। शंख चक्र गदा पुष्प उनके हाथ में है। और श्रीवत्स लक्ष श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभितम, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि बड़ी शोभा को शोभायमान हो रही है। और पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, पयोध कहते हैं वर्षा कालीन मेघ, जो काले काली जो घटाएं होती हैं, ऐसे वर्षा कालीन मेघ के बादल के समान उनका श्याम वर्ण और उस पर बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर बड़ा ही शोभामान हो रहा है।
महार वेदूर किरीट कुंडल त्वसा परीक्षक तो सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कंचंगद कंकणादि विरोचमानं वसुदेव अक्षत।
और क्या विशेषता थी उस बालक में? बोले बड़ी बहुमूल्य किरीटमणि के कुंडल थे उनके, बैदुर के बैदुर मणि के कुंडल थे, किरीट कुंडल थे, और उनकी भुजाओं में बाजूबंद थे, करधनी बड़ी सुंदर करधनी थी। यानी भगवान जब अवतरित हुए तो कैसे अवतरित हुए? अद्भुत बालक, बड़े बड़े नेत्र, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा हाथ में, और वस्त्र भी पहने हुए, आभूषण भी पहने हुए। ये भगवान का जन्म इस प्रकार अद्भुत जन्म होता है। लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं अरे भगवान और हम में अंतर ही क्या है, भगवान ने भी मां के गर्भ से जन्म लिया और हमने भी मां के गर्भ से जन्म लिया तो अंतर क्या रह गया? अंतर भगवान बता रहे हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं है। एवं यो वे तत्वतः चित्वादिहं प्रजनम क्या है मामेश्वर अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जान लेगा तो इस शरीर को त्याग करके भी जन्म मृत्यु को प्राप्त फिर नहीं होगा, मुझे प्राप्त होता है फिर वो। तो भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में जो व्यक्ति ठीक से समझ ले, तत्वतः जान ले, तो भगवान कहते हैं वो फिर मेरे धाम को आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर को नहीं पड़ता है, जन्म मृत्यु कभी नहीं जाना पड़ता। तो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में हमें, जो भगवान के कर्म मतलब उनकी लीलाएं, भगवान के जन्म के बारे में जानना चाहिए और भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाओं के बारे में जानना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ ले, उनके जन्म को समझ ले, तो फिर वो परम कल्याण उसका हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत उनके जन्म और लीलाओं को बताने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। भगवान आभूषण और वस्त्रों के साथ, आयुधों के साथ प्रकट हुए थे, अपने सब अस्त्र शस्त्रों के साथ, वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ भगवान प्रकट हुए। बसदेव जी ने जब ऐसा बालक देखा, एकदम आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में, ऐसा बालक, बड़े आश्चर्य में पड़ गए वो। पर उनकी, बसदेव जी की आंखें आनंद से खिल उठी, आहा, मैं समझ गया, साक्षात मेरे प्रभु ने मेरे घर में अवतार लिया है। अब तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए, इस बालक ने जन्म लिया है ना, तो इसका जन्मोत्सव मनाने के लिए उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गऊए दान कर दी, जेल के अंदर ही मन से ही ये मानसिक दान कर दिया उन्होंने, और ये संकल्प किया कि मैं 10,000 गऊए ब्राह्मणों को दान करूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन भगवान जब जेल कारागार में प्रकट हुए, सारा कारागार प्रकाश से जगमगा उठा। बसदेव जी का भय भी दूर हो गया, जो बसदेव जी डरे हुए थे कंस से, उनका भय भी दूर हो गया, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। विदितो असी भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबोधिद्रक। बसदेव जी बोले, प्रभो विदितो, मैं आपको समझ गया, आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका स्वरूप है केवल आनंद स्वरूप, केवल अनुभव और केवल आनंद, आप समस्त बुद्धियों के साक्षी हैं, प्रभो आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि करने वाले आप ही हैं, साक्षात भगवान है, प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा करके और हमारे घर आपने जन्म लिया है, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। बस देव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन अब देवकी की नजर पड़ी उस बालक के ऊपर, देवकी भी प्रसन्न हो गई, देवकी स्तुति करती है, प्रभु अरे आपने मेरे यहां जन्म लिया और 4-4 भुजाओं वाले, प्रभु ये तो आपका रूप, योगियों के ध्यान करने का रूप है, इस चतुर्भुज रूप का ध्यान तो योगी लोग अपने हृदय में करते हैं, और आपने चतुर्भुज रूप ऐसे लोगों के बीच में प्रकट किया है जो मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, सबके सब असुर हैं, यहां आपने असुरों के सामने और ये योगियों के ध्यान करने वाला स्वरूप प्रकट किया है, प्रभु इसको आप छुपा लो ना, आप चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं, प्रभु आपका ही रूप छुपेगा नहीं, इस रूप को छुपा लो प्रभो। और कंस को मालूम पड़ गया कि आपने मेरे यहां जन्म लिया है, तो कंस बड़ा बहुत दुष्ट है, वो आपको मारने का प्रयास करेगा, इसलिए आप, क्योंकि 4 भुजाओं वाले तो आपको कहीं छुपा भी नहीं सकते, अगर 2 भुजाओं में साधारण बालक हो तो कहीं छुपा भी, आपको छुपाया भी जाए, इसलिए प्रभु आप अपने 2 भुज में आ जाओ और अपने बाल रूप में आ जाओ, आप तुम्हारे पुत्र क्या पिताजी से लग रहे हो ना, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए, अपने बाल रूप में आ जाओ ना। भगवान बोले, देवी जानती हूं तुमने स्वयंभव मनमंत्र में और बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम दोनों पत पत्नी ने बड़ी भारी तपस्या की। पहले तुम प्रश्नी नाम से थी और बसदेव जी सुतपा थे, सुतपा। तो आपने देवताओं के दिव्य वर्ष 12,000 वर्षों तक दोनों ने तपस्या करी थी। जब तपस्या करी तो मैंने आपको दर्शन दिए। जब मैंने आपको दर्शन दिए और आपसे कहा कुछ वरदान मांगो, तो तुमने वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो आपके जैसा पुत्र हमें हो जाए। भगवान बोले, देवी मैंने खूब आंखें फैला करके पूरे ब्रह्मांड में देखा, मेरे समान तो कोई मेरे को देखा ही नहीं। तो मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां, मैंने तुमको वचन दिया है, तो मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां और प्रश्नी गर्भ से आया था और उसमें तुम प्रश्नी और सुतपा थे। उसमें प्रश्नी गर्भ नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब दूसरा अवतार मैंने लिया जब तुम अदिति थी और ये बसदेव जी उस समय कश्यप थे, कश्यप ऋषि। तब मैंने वामन के रूप में तुम्हारे यहां अवतार लिया था, तो लोग मुझे उपेंद्र भी कहते थे। और तीसरा जन्म मैंने अब तुम्हारे यहां लिया है, देवकी बसदेव जी के यहां। तो ये चतुर्भुज रूप से दिखाया मैंने कि जो मैंने तुमको वचन दिया था तो तुमको ये मालूम पड़े कि वास्तव में मैंने अपना वचन सत्य किया है। प्रभु वो तो बात ठीक है, पर इस रूप को छुपा लो, दो भुज में आ जाओ ना। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, भगवान ने कहा ठीक है, आप तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना, इस प्रकार वात्सल्य स्नेह से और मेरे चिंतन करने से तुम परम पद क्यों प्राप्त हो गए। भगवान इतना कहकर के चुप हो गए और उन्होंने अपनी योग माया से सबको देखते देखते ही दो भुज में आ गई, बालक हो गए। जब बालक हो गए तो भगवान की प्रेरणा से बसदेव जी उनको छुपाने के लिए गोकुल ले जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल ले जाने को तैयार हुए तो उनकी बेड़ियां पड़ी हुई थी और साथ साथ बड़े फाटक, बड़े पहरेदार थे। भगवान की लीला शक्ति से, भगवान की योग माया से सारे पहरेदार सो गए, सारे फाटक खुल गए, जंजीर उनकी खुल गई। क्यों नहीं खुल जाएंगी, जब साक्षात भगवान उनके हाथ में आ गए, केवल भगवान का नाम लेने से संसार के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। तो ये तो जंजीर के बंधन, लोहे के बंधन, काठ की किवारें, क्या इनसे मुक्त नहीं होंगे। साक्षात भगवान उनके हाथ में आ गए तो बसदेव जी जंजीर से मुक्त हो गए, कारागार से मुक्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण को बस गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। अर्धरात्रि है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी हो रही है। मानो ऐसी वर्षा हो रही है कि बादल भी भगवान को उन छोटी छोटी बूंदों के बहाने मानो पुष्पों की वर्षा कर रहा हो क्या भगवान के ऊपर। इधर बलराम भगवान पहले ही अवतरित हो गए थे रोहिणी के यहां, तो उन्होंने विचार किया, अरे भाई मैं तो पहले जन्म लिया है कन्हैया की सेवा करने के लिए ना, और मेरे गोविंद के ऊपर वर्षा हो रही है। तो शेष के रूप में उन्होंने छाता तान दिया ऊपर और बसदेव जी गोकुल को ले जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी में बहुत भारी जल था, इस समय भी काफी यमुना जी में जल चल रहा है, बहुत भारी जल है। जब यमुना जी का इतना भारी जल देखा तो बसदेव जी बोले, हे भगवान कैसे पार करूं उसे। इधर यमुना जी के मन में आया कि मेरे गोविंद साक्षात भगवान है और हमको पार करना, इनके क्रोध करने से पहले मार्ग दे देना अच्छा है, क्योंकि समुद्र ने, जब ये राम थे समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान ने क्रोध किया तो सब जीव जंतु जल गए समुद्र के। तो इनके क्रोध करने से पहले इनको मार्ग दे देना ही अच्छा है। तो यमुना जी का जल बहुत कम हो गया, घोटन घोटन जल हो गया। बसदेव जी यमुना को पार कर रहे हैं। इधर यमुना मैया ने विचार किया, जिन भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े
साधक बड़े बड़े योगी कई कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, मात्र चरणों के रस मिल जाए, तो आज इनके चरणों की रज को प्राप्त करूं। तो चरणों की रज के लोभ से जमुना जी में जल बढ़ा और वसुदेव जी की गर्दन तक जल आ गया। वसुदेव जी डर गए, अरे मैं डूब जाऊं कोई चिंता की बात नहीं, फिर मेरे लाला की तो रक्षा कैसे हो। एकदम पुकारना, अरे कोई लो मेरे लाला को, मैं डूब जाऊं कोई बात नहीं पर मेरे लाला को कोई लो। तो आज भी यहां कोयलो नाम का गांव है। तो जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा नीचे पैर कर दिया, जमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया और फिर घोटू घोटू जमुना जी हो गई। वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा मैया लेटी हुई थी, योग माया ने पहली जन्म ले लिया लड़की के रूप में, कन्या उत्पन्न पर उन्हें योग माया के प्रभाव से कुछ पता ही नहीं, कोई खबर नहीं। वसुदेव जी गए और जाकर के लड़के को वहीं सुला दिया और लड़की को लेके अदला बदली करके वो वापस आ गए। वापस अपने कारागार में आए, जैसे ही कारागार में आए अंदर जब प्रवेश कर गए लड़की को लेकर के, तो उनकी बेड़ियां जैसी तैसी पैरों पड़ गई, हाथों में हथकड़ी लग गई, है ना। जब भगवान हाथ में आए तो बंधन खुल गया, और जब माया हाथ में आती है तो बंधन लग जाता है ना, माया बंधन में डाल देती है, तो फिर वो बंधन में फंस गए। पहरेदार जग गए, उस बच्चे की रोने की आवाज आई, पहरेदार भागे भागे कंस के पास के, महाराज देवकी के बच्चा हुआ है। अब तो कंस ने जैसे ही सुना तो ना तो मुकुट लगा पाया ना वस्त्र पहन पाया, जैसे रात्रि की ड्रेस में सो रहा था वैसा का वैसा तलवार उठाई और दौड़ा दौड़ा, कहीं गिर भी जाता है फिर उठता है, फिर खड़ा हो जाता है फिर गिरता है, गिरते लड़खड़ाते दौड़ा दौड़ा आया कि इस बार तो मेरे काल ने ही जन्म लिया है, शीघ्र से मार देना चाहिए, कहीं बड़ा हो गया तो मारना भारी पड़ जाएगा ना। बड़ी जल्दी से दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देवकी की गोद से उस बालक को छीना। देवकी भैया दया करो मेरे ऊपर, ये कन्या है। कंस बोला नहीं कन्या नहीं, नहीं महाराज कन्या है और ये आपकी भांजी है, इस पर दया करो, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, एक तो ऐसे ही नष्ट हो गया, अरे 8वीं कन्या भैया है, भैया या कन्या को छोड़ दो तुम्हारी भांजी है। कंस बोला नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने विचार किया कैसे छुड़ाएं इस दुष्ट से, देखो भैया मैं वचन देती हूँ इस कन्या को तुम्हारे लड़के के साथ विवाह कर दूंगी, ये तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी, इसको मत मारो। पर कंस फिर भी नहीं मानने वाला, फिर भी नहीं माना, जबरदस्ती देवकी गोद से उस कन्या को छीन ही लिया। छीन करके जैसे ही उसने आकाश में घुमा करके शिला में पटक के मारना चाहो, उसके हाथ से छूट गई, अष्टभुजी देवी बन गई। एकदम हंसने लगी, अरे मूर्ख कि मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत यत्र कवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणाम्रथा। वो अष्टभुजी देवी बोली, अरे मूर्ख मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, अरे तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी अन्यत्र स्थान पर पैदा हो चुका है, अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस ने जैसे ही सुना कि मेरे मारने वाला कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका, बड़ा आश्चर्य पड़ा, क्या देवताओं की वाणी झूठी होती है, अरे आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी और कहीं दूसरी जगह मेरे काल ने जन्म लिया है। बड़ा आश्चर्य पड़ गया, वो देवता झूठ बोलते हैं क्या, और फिर देवकी की 8वीं कन्या बड़े आश्चर्य में, और वो भी ये देवी बन गई। कंस बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अष्टभुजी देवी इस प्रकार कहकर के चली जाती है। इधर कंस अपने घर वापस आता है, वापस आकर के
और अपने जो उसके मित्र थे सल तोसल चालुर इत्यादि और बकासुर अघासुर इत्यादि इनसे मंत्रणा करने लगा। इधर चलते हैं अब गोकुल की ओर। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन गोकुल में जब नंद महाराज को यह मालूम पड़ा कि हमारे यहां वृद्धावस्था में लाला की प्राप्ति भई है, जब नंद महाराज को समाचार मिला बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामन आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचलंकृत। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन नंद बाबा बड़े मनस्वी और बड़े उदार थे, पुत्र का जन्म सुनते ही उनके हृदय में बड़ा विलक्षण आनंद आ गया, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान किया और बड़े सुंदर वस्त्र पहने, वस्त्र आभूषण धारण करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया, जातकर्म संस्कार करवाया और साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा कराई। अब ब्रज में जब ये मालूम पड़ा कि नंद महाराज की वृद्धावस्था में लाला हुआ, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, सबकी सब गोपियां आनंद में नाचने लगी और सब उपहार देने के लिए आते, कोई माखन लेके आ रहा है माखन की मटकी, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई घी लेके आ रहा है, सब चल पड़े नंद के द्वारे पर।
ओ चलो देखिया भी,
सभी बड़े उतावले, चलो देख के आते हैं नंद के घर लाला हुआ है।
चलो देखिया बे, ओ चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ, चलो
चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया बे,
ओ चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ जी, चलो देखिया बे,
चलो देखिया बे
यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया बे,
यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया बे,
ओ चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया बे,
चलो नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया बे।
ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल,
सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल,
सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल,
सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल,
भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल,
भैया गर्दन
आज नंद का नशीबा उजाला हुआ, चलो देखिया बे,
आज नंद का नशीबा उजाला हुआ, चलो देखिया बे,
ओ चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ,
चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ,
यदुवंश के कुल का उजाला हुआ,
यदुवंश के कुल का उजाला हुआ,
ओ चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ,
चलो देख
के ग्वाल करे जय जय गोपाल,
सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल,
सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल,
सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल।
बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल,
बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल,
ओ बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल,
बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल।
ओ झूले अंगना में पलना घड़ाला हुआ, झूले
देख आवे झूले पलना में ललना जहां लाला हुआ, चलो देख आवे
ओ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे
चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे।
सभी गोपियां बड़ी उमंग में और कहती चलो नंद के द्वार चलते हैं, लाला के दर्शन करके आएंगे।
ओ सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे,
सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे,
ओ सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे,
सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे।
हे ब्रजवासी सब आए रहे,
हे ब्रजवासी सब आए रहे,
कुर्ता टोपी सब लाए रहे, ब्रजवासी सब आए रहे,
ब्रजवासी सब आए रहे,
ओ कुर्ता टोपी सब लाए रहे,
कुर्ता टोपी सब लाए रहे,
सब बोले जय जयकार, ओ कार लाला के दर्शन कर आवे,
सब बोले जय जयकार, ओ कार लाला के दर्शन कर आवे,
ओ सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे,
सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे।
सभी ब्रजवासी बड़े उमंग में सब आ रहे हैं और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं।
ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
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 हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने काल 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 की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की,
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने काल की,
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने काल की,
हाथी दिए घोड़ा दिए और दिने काल की,
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने काल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
लो कन्हैया लाल की
जय,
गौ दयाल की
जय।
नंद महाराज के यहाँ
बड़ो ही आनंद भयो और सभी ने कृष्ण का बड़ा स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए, सभी ब्रजवासियों ने स्वागत किया भगवान का और सभी बड़े प्रसन्न हुए। और ये नंद उत्सव एक दिन नहीं कई दिन तक चलता रहा, यहाँ तक कि ऐसा वर्णन गोपाल चंपू में आता है कि नंद महाराज इतने प्रसन्न थे, इतना दान लुटा रहे थे लाला के जन्मोत्सव के अवसर पर, इतना दान लुटा रहे थे जो भी हाथ में पड़ता नंद महाराज के बस सबको दान देते थे। और दान लेने वाले भी इतना उनके पास दान आ गया उसको संभाल नहीं पाते, वो दूसरों को दान करते थे और वो भी लोग दूसरों को दान करते थे, इतना नंद बाबा ने खूब दान लुटाया। लुटाते कैसे नहीं, क्योंकि वहां धन की तो कोई कमी नहीं। सुखदेव गोस्वामी के तिराजन, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन होत नृप। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, जब से भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के ब्रज में अवतरित भये तभी से ब्रज की इतनी शोभा बढ़ी कि सर्व समृद्धिमान ब्रज इतना समृद्ध हो गया। यद्यपि पहले से ही नंद महाराज खूब धनवान थे, बहुत सारी गायें थी उनके पास, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ब्रज में आए, ब्रज में अवतरित भए, तब सो यह ब्रज की ऐसी शोभा बढ़ी, नंद महाराज को ब्रज इतना समृद्ध हो गया कि रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां करने लगी। वहां सारी रिद्धियां सिद्धियां वहीं आकर की अटखेलियां करती थी। अरे यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का वहां अवतार होने से, प्रकट होने से साक्षात भगवती लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ को छोड़कर के और वही उनका निवास स्थान बन गया, गोकुल में ही रहने लगी लक्ष्मी जी। अब जहां साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो, रिद्धियां सिद्धियां वहां अटखेलियां कर रही हो, तो नंद महाराज के ब्रज में किसी वस्तु की किसी चीज की कमी, बहुत कुछ धन, बहुत समृद्ध हो गए पूरे। इतना ऐश्वर्य नंद महाराज का बढ़ गया, इतना ऐश्वर्य कि पृथ्वी में तो कोई तुलना कर ही क्या सकता है। इंद्र का जो ऐश्वर्य है ना, वो भी फीका पड़ गया उनके सामने। गोपियों ने तो यहां तक कहा है कि हे प्रभु, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से यह पृथ्वी की ऐसी शोभा बढ़ी है, ऐसी शोभा बढ़ी पूरे पृथ्वी का ही ऐश्वर्य वैकुंठ के समान क्या, वैकुंठ से भी बढ़कर के इस पृथ्वी का ऐश्वर्य हो गया है वृंदावन के कारण। नंद महाराज का बड़ा भारी ऐश्वर्य, खूब धन लुटाया, जो भी हाथ में पड़ता खूब दान करते। दान लेने वाले रहे नहीं, अब दान करने वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि उनके पास इतना धन, लेने वाला कोई रहा ही नहीं। गोपाल चंपू वर्णन आता है, बसदेव जी जब से अपने लाला को नंद महाराज के ब्रज में छोड़ के आए तब सो एक एक दिन गिनते, आज लाला हमारो एक दिन को है गो, आज हमारा लाला दो दिन का हो गया, एक एक क्षण गिनते थे नंद वो बसदेव जी। इधर बसदेव जी को मालूम पड़े कि ब्रज में नंद महाराज बहुत बड़ा भारी धूमधाम से लाला का उत्सव मना रहे हैं और खूब धन लुटा रहे हैं, इतना ऐश्वर्य के साथ नंदोत्सव मना रहे हैं, और ऐसा समाचार कहीं कंस को मालूम पड़ जाए तो कंस बड़ा दुष्ट है, दुष्ट लोग किसी के सुख को नहीं देख सकते, दुष्ट स्वभाव के जो लोग होते हैं किसी की बढ़ोतरी नहीं देख सकते, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, दुष्टों का ये स्वभाव होता है। दुष्ट जो है अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं, ये सुखी कैसे है, हमारा पड़ोसी हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। और कंस बड़ा दुष्ट है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आप लोगों सुनी भी होगी, दोबारा फिर उसको सुनाते हैं, है ना, सुनिए ना, कुआं वाली नहीं सुनी,
चलो दोबारा सुनाते हैं हम, और दोबारा कोई बात नहीं, सुनियो फिर दोबारा सुनाते, अच्छी लगती है वो। एक पंडित जी थे तो खूब सेवा करते भगवान भोलेनाथ की, कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, हमको खूब धन मिल जाए। बड़ी सेवा करते जाकर के भगवान शिव के मंदिर में जाके और जल चढ़ाते थे, और कभी आक धतूरा कुछ भी चढ़ा देते थे। भगवान भोलेनाथ बड़े बड़े बहुत सरल हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी सेवा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आग धतूरा कुछ भी चढ़ा दे, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मांगो भाई तुम्हें क्या चाहिए, पर मेरा डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे प्रभु का नाम जपने दो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमेशा
महामंत्र ये जपत महेशो मुक्ति हेतु का उपदेशो
काशी हेतु उपदेशो
जपत महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेश।
भगवान भोलेनाथ 12 महाजनों में से और सबसे श्रेष्ठ महाजन है, वैष्णवों में भी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव महा भागवत है भोलेनाथ, जो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र ये जपत महेशु, हमेशा ही महामंत्र का जप करते रहते हैं भोलेनाथ। उनका जो भक्त होता है, उनकी सेवा करता है, उनसे कुछ मांगता है तो जो चाहिए वो ले ले, पर मेरा डिस्टर्ब मत कर, मुझे मेरे प्रभु का जप करने दे। भोले वाले भोलेनाथ हैं, जो कोई मांगता है दे देते, पर अपने प्रभु का जप करते रहते हैं। तो सारे पंडित जी भगवान शिव के मंदिर में गए, घंटी बजाई और कई दिन दो चार दिन उन्होंने भक्ति करी होगी, भगवान प्रसन्न रह गए। अरे ब्राह्मण देव क्या चाहिए बोलो, भगवान प्रसन्न हो गए। पंडित जी बोले महाराज चाहिए क्या, हमारे घर में बहुत थोड़े धन की कमी है और हमारे पड़ोसी है ना बहुत, काफी बड़ा उनका ऐश्वर्य बढ़ गया है, बहुत बड़ी, हमारा टूटा फूटा घर है, पड़ोसियों बड़ा अच्छी बिल्डिंग खड़ी है, महाराज धन दे दो तो हम भी बढ़िया सी अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने अच्छे फ्लैट बनाए, बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके रहे। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, ये हमारी घंटी लटक रही ना, एक घंटी कोई तोड़ के ले जाओ, और तुम्हें जो भी आवश्यकता हो ना तो बस नहा धो करके और बस मेरा स्मरण करके घंटी बजाइयो, हे भोलेनाथ की घंटी, हमें वो वस्तु की आवश्यकता, वही तुम्हारे पास आ जाएगी, जो भी मांगोगे वही तुम्हारे पास आ जाएगा, पर इसमें एक विशेषता है, तुम्हारे घर आएगा एक और पड़ोसी घर दो पहुंच जाएंगे। अब पंडित जी बस बड़े चिंता में पड़ गए, भोलेनाथ ने हमें वस्तु तो एक चीज तो बढ़िया दी, पर वही चक्कर रह गया, पड़ोसी फिर भी हमसे दोगुना ही रहेगा, उसके बाद दुगनी वस्तु पहुंच जाएगी। घंटी तो ले आए, तो लाकर के घंटी घर में रख दी, बजाई नहीं उन्होंने, क्यों बजा देंगे तो हमारे घर में एक वस्तु आएगी, पड़ोसी घर में डबल डबल पहुंच जाएगी। ये दुष्टों का स्वभाव है, स्वयं कष्ट को उठा लेंगे पर दूसरों को दुख देंगे। घर में खाने के लिए कुछ रहा नहीं, पंडित आने थे बोले देखो हम थोड़ा ना कहीं किसी शहर में जाकर के कहीं नौकरी करेंगे जाकर के, ठीक है महाराज, वो तो कहीं नौकरी करवे आए ऐसा के झांसी आ गए होंगे मेरे ख्याल में, है ना, कहीं ना कहीं जॉब किया उन्होंने यहां, अब उनको ठीक से नौकरी यहां भी नहीं मिली। इधर घर में जो उनकी पत्नी थी बड़ी दुखी रहती थी, घर में खाने को था नहीं, बिचारी कई के दिन भूखी रहती थी। उसने एक दिन विचार किया, हमारे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, कारण क्या है, हमारे घर बिल्कुल लक्ष्मी धन आता ही नहीं, चलो घर की खूब सफाई करते हैं, क्योंकि जिस घर में खूब सफाई हो वहां लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर की खूब सफाई करते। तो उस बिचारी ने घर की खूब सफाई, खूब लीपा पोती करी घर की, खूब बढ़िया करके, और जो महादेव जी घंटा रखा था एक कोने में वहां भी लीपना था उसे, उसको उठा करके दूसरी जगह रखना चाहा, वो घंटा बज गया।
जैसे घंटा बज गया तो उसके सामने सोने की थाली में 56 प्रकार के बड़े अच्छे व्यंजन भोजन आ गया, क्योंकि उसकी बहुत कई दिन से इच्छा थी बढ़िया कहीं भोजन मिले खाने को। बड़ी भूखी थी बिचारी, उसकी जो इच्छा थी उसके सामने सोने के थाल में बढ़िया कई प्रकार के भोजन आ गए, वहां 56 प्रकार के भोग। अब तो वहां में भूखी थी बिचारी, बड़े प्रेम के साथ खूब पेट भर के उसने अपना भोजन किया। जब पेट भर गया फिर विचार किया भोजन कहां से आया, पहले तो भूखे में खा लिया, पहले कोई विचार नहीं, चलो भोजन क्या खा लो, फिर बाद में सोचा ये भोजन सोने की थाली में इतना बढ़िया भोजन आया कहां से, कोई व्यक्ति तो आया नहीं, कोई देने भी नहीं आया, कैसे कहां से आया। वो समझ गया, हाँ जब मैंने घंटा ये घंटा बज गया तो घंटे की आवाज को सुनते ही सोने की थाली में भोजन आया, ऐसा लगता है घंटे में कोई विशेषता है मेरे। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, कहे घंटा देव अगर तुम्हें ऐसी कुछ विशेषता है तो हमारा घर तो टूटा फूटा घर है, हमारा बढ़िया सा अच्छा घर बन जाए। तो तुरंत ही बहुत बढ़िया उनका अच्छा अच्छा फ्लैट बन गया, बहुत बढ़िया घर बन गया। पर घंटा में ये विशेषता थी, पड़ोसी को डबल लाभ होता था उससे। अब पड़ोसियों के डबल डबल, उसका एक मंजिल पड़ोसियों के डबल डबल मंजिल बन गए उसके घर। पर उसे बेचारी कोई पता नहीं, घर में ही रहती, जो आवश्यकता होती घंटा बजाती, सब चीज घर में आ जाती उसके। बड़े सुख से चैन से रहने लगी। इधर बेचारे पंडित जी कहीं नौकरी भी ठीक से नहीं लगी, भटकते भटकते फिर घर पे आए। जब घर पे आए देखा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है भाई। घर में प्रवेश किया, उनकी पत्नी पानी लेके आई, बोले पानी तो बाद में पीऊंगा, ये बताओ ये इतना बढ़िया घर कैसे बना। अरे महाराज देखो तुम्हें घंटा की कुछ विशेषता मालूम नहीं थी, या घंटा में कितनी विशेषता, ये घंटा हिल गया और मेरे पास भोजन आ गया, मैंने इसकी परीक्षा ली, घर भी बना सकता है तो घर बहुत अच्छा घर बन गया। अब जो भी मुझे आवश्यकता होती है वो इस घंटा से मांग लेती हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, आराम से सुख से चैन से घर में रह रहे। पंडित जी बोले तुमने घर से बाहर निकले कुछ देखा है कि नहीं देखा कुछ। बोले महाराज घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सारी कुछ चीज घर में आ जाती है अपने आप। अरे घर से बाहर निकल के देखो, तुम्हारा तो एक मंजिल बना है और पड़ोसियों के डबल डबल मंजिल बन गए। अब तो बेचारे ने पानी वानी तो पीना भूल गया, भोजन भी भूल गया, लाओ घंटा लेके आओ कहां है। और उसने घंटे को उठाया और कहा हे घंटा जी तुम्हें अगर ऐसी विशेषता है। उसने विचार किया लोगों का पड़ोसियों का कैसे इनका नुकसान हो, कैसे इन्हें कष्ट दें। तो बोले हे घंटा जी अगर तुम्हें विशेषता है तो मेरे घर में एक कुआ हो जाए। तो उसके घर में एक कुआ हो गया और पड़ोसी घर में आप फिर बोला हे घंटा देव मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी तो एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों साथ। उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों आंख गायब हो गई, है ना। अब जिसके घर में दो दो कुआ हो और आंखें एक भी नहीं हो क्या हाल होगा फिर, घर से निकलेंगे धड़ाम कोई नहीं गिरेंगे। तो ये दुष्टों का स्वभाव होता है, किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते वो, अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान करते हैं। पर भगवान भोलेनाथ ने विचार किया दुष्ट अरे मैंने तुझे इतनी बढ़िया चीज इसलिए थोड़ी दी दूसरों को कष्ट दे। वो फिर उस घंटा में कोई शक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। फिर कहने का तात्पर्य है कि दुष्ट लोग दूसरे के बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। तो बसदेव जी ने विचार किया कि नंद महाराज इतनो बड़ो उत्सव कर रहे हैं, अगर ये कंस को मालूम पड़ गई तो वो अनिष्ट कर सकता है, उससे सहन होगा नहीं। नंद महाराज का इतना ऐश्वर्य सहन नहीं होगा उससे। तो उन्होंने अपना एक दूत भेजा, गुप्तचर दूत बसदेव जी ने, कि जाओ नंद महाराज से कह दो कि नंद महाराज जो कंस का वार्षिक टैक्स होता है, सालाना कर है ना, जो राज कर देते हैं राज टैक्स, उस टैक्स को समय से पहले पहुंचा दें। जो कोई राजमंत्री वहां पर टैक्स को लेने को आए उससे पहले ही पहुंचा दें तो किसी को पता लगेगा ही नहीं कि ब्रज में कितना ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है। तो ऐसा समझा करके अपने दूत को उन्होंने और गोकुल में भेजा। पर उस बसदेव जी का एकदम बिल्कुल वो मित्र सा ही था। और जब दिन में चलने लगा, दिन में कहीं देखा कंस ने सभी जगह बड़ी भारी व्यवस्था कर दी, कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं जा सके। रात्रि में निकला तो सारी नाव भी सब नावों में जो नौका है सब में ताले डलवा दिए, रात्रि में कोई यमुना पार नहीं करे। कंस ने ऐसी व्यवस्था कर दी। जीव गोस्वामी गोपाल चंपुई लिखते हैं, तो उस व्यक्ति ने बेचारे रात्रि में ही अपने कपड़े उतार के और यमुना को तैर करके पार किया और रात्रि में ही नंद महाराज के गोकुल में पहुंचा। नंद महाराज ने उसको पहचान लिया, क्योंकि बसदेव जी के साथ पहले भी आता था वो। नंद महाराज ने पहचान लिया उसे और कहा, अरे भाई तुम्हारा ये हाल तो भीगे हुए। सारी बात बताई उसने और कहा, देखो बसदेव जी ने कहा है कि आप शीघ्र से शीघ्र कंस का जो सालाना टैक्स होता है पहले पहुंचा दो। सारी बात बता दी। अब नंद महाराज थोड़े भयभीत होने लगे, वो दुष्ट कंस कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट न कर दे। तो नंद महाराज ने उसकी बात को समझ करके और उपनंद सुनंद इत्यादि अपने सभी भाइयों को बुलाया और सभी से उन्होंने सलाह ली और सबको ये बताया, बसदेव जी का समाचार बताया कि इस तरह से बसदेव जी ने संदेश भेजा है, क्या करना है। तो सभी उपनंद और सुनंद इत्यादि सभी ने कहा कि बिल्कुल बसदेव जी ने ठीक कहा है, कंस दुष्ट तो है ही, इसलिए उसका वार्षिक कष्ट वो टैक्स देना तो होता ही है, पहले पहुंचा दो, क्या एक दो महीना पहले पहुंचा देंगे तो क्या बात है, वो प्रसन्न और हो जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव उन्होंने पास किया। तो पांचवें दिन नंद महाराज सभी अपने बड़े बूढ़े गोपों को लेकर के कंस का टैक्स देने के लिए जाने की तैयारी में है, पर कन्हैया से एक सेकंड हटने का उनका मन नहीं करता, क्योंकि वृद्धावस्था में एक लाला की प्राप्ति, वही कृष्ण उनकी आंखों के तारे थे। जब तक नंद महाराज दिन में दो चार बार नहीं देख लेते तब तक उनको चैन नहीं आता था। अब अपने लाला को छोड़कर के मथुरा जाने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा, क्योंकि लाला की रक्षा हो कैसी। पर उन्होंने विचार किया कि गोकुल में किसी प्रकार का कोई अनिष्ट हो जाए तो गोकुल की रक्षा के लिए यहां कुछ लोगों को लगाना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिकम् करंदा तुम कुरु। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जब नंद महाराज मथुरा में कंस के टैक्स को देने के लिए तैयार हुए जाने के लिए, तो गोकुल की रक्षा के लिए, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, गोकुल की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलवान गोपों को, जो जवान गोप थे, मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, खूब पहलवान थे, ऐसे गोपों से कहा कि देखो तुम भाई गोकुल को चारों तरफ से इसकी रक्षा में तैयार रहना। किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको पकड़ा दिए और सावधान रहना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपरिचित व्यक्ति गोकुल में प्रवेश नहीं करे। तो बलवान गोप बोले, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, हमारे सामने किसी की हिम्मत नहीं जो यहां कोई प्रवेश कर सके, हम पूरा रक्षा में रहेंगे, तैयारी में रहेंगे। नंद महाराज तो चले जाते हैं कंस का टैक्स देने के लिए और वहां कंस का टैक्स भी दे चुके जब कर चुका चुका दिया उन्होंने, ये बात बसदेव जी को मालूम पड़ी। बसदेव जी सुना कि नंद महाराज यहाँ आए हुए मथुरा में और कंस का टैक्स भी दे चुके हैं, तो अवसर देख करके एकांत में उनसे आकर के मिले। जैसे ही नंद महाराज ने देखा कि बसदेव जी आ रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ खड़े हो गए और दौड़ के पड़े, उनको हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू की धारा बहन लगी। बसदेव जी हृदय से लगा लिया, ऐसा लगा मानो ये मृत्यु के बाद उनको पुनः दोबारा जीवन मिला है क्या। हृदय से लगा लिया और गदगद होकर के रोने लगे और फिर बोले, बसदेव जी देखो भगवान की कैसी विचित्र माया है, तुम्हारे ऊपर कितने कितने भारी कष्ट आए, दुष्ट कंस ने कितना अत्याचार किया तुम्हारे ऊपर, छह छह पुत्रों को मार दिया, सातवां गर्भ ऐसे ही गिर गया, अरे आठवीं एक कन्या वही वो दुष्ट ने उसको ही मारना चाहा, बिचारी वो स्वर्गलोक को चली गई देवी बन के, कितना अत्याचार किया तुम्हारे ऊपर दुष्ट ने। नंद महाराज बोले, बसदेव जी वो तो बात ठीक है, पर जैसी भगवान की इच्छा हो वही होता है, पर देखो तुम्हारे ऊपर भगवान ने बड़ी विशेष कृपा करी है, क्योंकि अब तुम्हें कोई संतान की आशा नहीं रही थी वृद्धावस्था में, आप बुढ़े हो चुके थे, वृद्धावस्था तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई, संतान की आशा तुम्हारी टूट ही गई थी, पर भगवान ने बड़ी भारी कृपा करी, जो वृद्धा अवस्था में तुम्हारे यहां एक लाला की प्राप्ति हुई है। तो नंद महाराज बोले, हाँ ये तो भगवान की बड़ी भारी कृपा भई है कि वृद्धावस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, ये सब सब आप लोगों को ही भाग्य से हमें लाला की प्राप्ति भई है। क्या श्री प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि बसदेव जी को थोड़ी शंका सी थी कि कहीं नंद महाराज को इस बात का पता न लग गया हो कि मैं इनके यहां से इनकी संतान को अदला बदली करके ले आया हूं, क्योंकि इनकी लड़की को लेके आया बेचारी वो देवी बन के चली गई आकाश में, इन्हें इस बात का कुछ पता न हो कहीं, तो वो समझ गए हाँ कि अब नंद महाराज को पूरी पूरी तरह से इन्हें कुछ पता नहीं है। शोकदेव गोस्वामी कहते, राजन इधर तो नंद महाराज और बसदेव जी का ये वार्तालाप हो रहा है, बसदेव जी नंद महाराज से कहते हैं कि नंद महाराज देखो अब आप कंस का टैक्स चुका चुके हो, अब आप वापिस जा सकते हो, क्योंकि आप उन अपने दोनों बालकन की रक्षा करो, पर हमारा जो पुत्र है ना रोहिणी नंदन, वो भी आपको ही अपना माता पिता समझता होगा, क्योंकि आप उनका लालन पालन करते हो, जाओ अपने बालकों का ठीक से लालन पालन करो, क्योंकि हो सकता है गोकुल में किसी प्रकार का कोई अनिष्ट हो जाए। तो इधर तो नंद महाराज वहां से वापस आ रहे हैं और इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। इधर कंस की भेजी हुई पूतना ब्रज में बालकों की हत्या कर रही थी, बालकों को मारती घूम रही है। कंस ने जब भेजी है तो आज उसको घूमते घूमते 5 दिन हो गए घूमते घूमते, और छठे दिन वो गोकुल में प्रवेश करेगी। तो अब पूतना का प्रवेश गोकुल में आज नहीं कराएंगे हम, कल पूतना का गोकुल में प्रवेश होगा, और भगवान उस दिन 6 ही दिन के होंगे और पूतना का उद्धार करेंगे। तो कल पूतना का उद्धार और यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया के मुंह में, और भगवान की मृदु भक्षण लीला, और भगवान की माखन चोरी लीला, ये कथाएं कल हम करेंगे, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं।